नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर जी, आपका स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद करिश्मा, आपको और सभी सुनने वालों को नमस्कार।
तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जारी। वहीं कल दक्षिण अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचा। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डेविड नवारा के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा और भारतीय युवा मुक्केबाजी टीम वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में भाग लेने के लिए बैंकॉक रवाना हुई। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात क्रिकेट की करेंगे। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में भारत ने 5 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। वहीं पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कल न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था। अब फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तो जिस तरीके से कुलविंदर जी इस समय मैच चल रहा है, देख के क्या लगता है? क्योंकि शुरुआती में तो भारत की तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ और सैमसन एक बार फिर से आज छाते हुए दिखाई दिए।
देखिए, किसी न किसी एक या दो खिलाड़ियों ने चलना होता है और चल जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा स्कोर है, 18 ओवर के बाद 215 रन बने जब हम स्टूडियो में आ रहे थे
जी।
अभी हार्दिक पंड्या है, उसके बाद तिलक वर्मा है, अक्षर पटेल है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा होते होते तकरीबन 230 32 35 हो जाएं तो इंग्लैंड के लिए काफी मुश्किलें होंगी, क्योंकि मैदान छोटा है।
हाँ।
लंबे लंबे छक्के जरूर बल्लेबाज का मन करता है उठाने को। सही तरीके से आज भारत के शिवम दुबे ने लगाए, संजू सैमसन ने लगाए, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से खेला।
हाँ।
और इतना बड़ा स्कोर बना है और ये नॉकआउट है। नॉकआउट पे तो आपको पता ही है कि पूरी कोशिश होती है, पूरी पीछे आपने जो गलतियां की आप उन गलतियों को यहां रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि T20 में वापसी के कोई चांस नहीं होते।
हाँ।
यहाँ शुरुआत में एक बार फिर से अभिषेक जो शर्मा है वो नहीं चले। एक्चुअल क्या, अभिषेक शर्मा एक तो नए हैं, थोड़ा अनुभव होने के बाद थोड़ा समझेंगे और उसको उन्होंने पढ़ लिया है। ये हमेशा पहली गेंद को जो उनको रडार में मिलती है ऑफ स्टंप के बाहर, उसको उठाते हैं ये लॉन्ग ऑफ पर। लेकिन गेंदबाज ने पढ़कर उसकी गेंद को मिडल और लेग की स्टंप की तरफ थोड़ा सा डाल दे तो उनको फिर ऑन साइड में उसको करना पड़ता और वहां पर उन्होंने विल जैक्स को लगा रखा था उन्होंने फील्डर लगा रखा था, दोनों विकेट जो गए वहीं गए।
हाँ।
तो एक जो कैच ड्रॉप हुआ वो बहुत भारत के लिए भाग्यशाली रहा, 15 के निजी स्कोर पर संजू सैमसन, नहीं तो इतना स्कोर ना होता। आज भी संजू सैमसन ने जो 7 छक्के लगाए, 8 चौके लगाए, 89 रन की पारी खेली केवल 42 गेंदों पर। तो ये एक संकेत है कि भारतीय टीम एक सारी अच्छी है, उसमें 2-3 खिलाड़ी चल जाते हैं। अगर तो आज भारत फाइनल में पहुंच जाता है।
हाँ।
तो मुझे लगता है कि शायद अभिषेक शर्मा की ये बात भी माफ हो जाएगी कि वो एक बार फिर से आउट हो गए।
लेकिन
अगर अगर भारत खुदा न खास्ता कोई गलत डिसीजन होता है भारत के विरुद्ध तो उसके लिए काफी मुश्किलें होंगी। आप कुछ कह रही
हैं, लेकिन जो भारत की बल्लेबाजी लाइनअप है उसमें आपको क्या लगता है, क्या बदलाव की जरूरत है? अभी तक जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है,
बदलाव की क्या जरूरत हो सकती है? और कौन आएगा, किसकी जगह आएगा? आप ज्यादा रिंकू सिंह को खिला सकते हो, अभिषेक को बाहर कर दोगे। लेकिन अगर आज भारत मैच जीत जाता है तो कोई ऐसी पारी होती है, आपने देखा शेफाली वर्मा को खिलाया नहीं था और फाइनल में वो ऐसी पारी खेल गई कि भारत महिलाओं का विश्व कप जीत गया। तो हो सकता है कि आज अगर भारत जीता है तो अभिषेक शर्मा की वो पारी ड्यू है, शायद वो फाइनल के लिए ड्यू है और वो खेलेगा। आज उन्होंने निराश किया, सबको लग रहा था डर कि ये आउट हो जाएंगे और 2 चौके भी लगाए, उनका खेलने का स्टाइल ही एक ही है। लेकिन उनको थोड़ा सा उनके जो कोचेज हैं बैटिंग वाले उनको समझाना होगा, बताना होगा, और युवराज सिंह ने उसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से जो पेम्पर कर रखा है उसको थोड़ा सा और कसना पड़ेगा, ताकि आपको जहां रुक कर खेलना है वहां पर रुक कर खेलिए और जहां आपको छक्के लगाने उस गेंद पे लगाइए। अभी एक छक्का लगाया था इसने शिवम दुबे ने, अगली गेंद पे एक रन लिया
जी।
ये नहीं कि मैं दूसरी गेंद पे भी छक्का लगाऊं। हाँ, हाँ। तो आदिल रशीद को बड़े प्यार से खेला लेकिन वो विकेटें ले गए, कैंसर करण है। तो अच्छे खिलाड़ी इंग्लैंड के भी, इंग्लैंड को स्कोर मिलना चाहिए बड़ा से बड़ा। 18 ओवर के बाद 223 रन बन चुके हैं 5 विकेट पर। तो मैं समझता हूँ भारत अगर 230-235 के आसपास बनाता है तो इंग्लैंड के लिए काफी मुश्किल।
अब जो भारतीय गेंदबाजी टीम होगी उनकी क्या रणनीति हो सकती है?
पावर प्ले में 2 विकेट चाहिए भारत को, और वो अर्शदीप ये काम करते हैं। अर्शदीप हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या हैं। इसके अलावा अभी तक एक थोड़ी सी हैरानी वाली बात है, भारत के जो मिस्ट्री स्पिनर हैं वरुण चक्रवर्ती, वो अपना कारनामा नहीं कर सके। हो सकता है वो आज कुछ करे। और ये विकेट स्पिनर्स को फ्लैट विकेट जरूर है जैसा कि कहते हैं कोच और कप्तान ने कहा है। और टॉस हारने के बाद भी सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि हम पहले बैटिंग ही करना चाहते थे, हालांकि मेरी सोच ये थी कि पहले फील्डिंग करनी चाहिए थी। और क्योंकि पीछे समुद्र का किनारा है, थोड़ा सा ड्यू का फैक्टर भी रहता है, गेम ढीली रहती है, हाथ में नहीं आती, तो ये मुश्किलें आती है। लेकिन अब ठीक है क्योंकि जो आपने निर्णय लिया उसमें आप 225 के ऊपर रन बना जाते हैं तो काफी मुश्किल इंग्लैंड को होगी।
बिल्कुल, इंग्लैंड की ओर से अभी जॉश बटलर भी हैं, उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है, ऐसे में भारतीय टीम की रणनीति में कोई बदलाव हो सकता है?
मैंने आपको बोला रणनीति में बदलाव है कि उनको पूरा स्टडी कर रखा है इन्होंने, जो ओपनर है उनके फिल सॉल्ट और जॉश बटलर और हैरी ब्रूक जो कप्तान, उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो 228 रन बना चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि शुरुआत में इस जोड़ी को तोड़ना होगा जो ओपनर है। अगर उनको भारत जल्दी आउट कर लेता है, पावर प्ले में भारत को 2 विकेट चाहिए, चाहे ये जोड़ी ना टूटे, जो 2 बाद में आता है वो भी अगर आउट हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा दबाव होता है। कल आपने देखा होगा, उस पर हम बात करेंगे, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले की, दूसरे ओवर में स्पिनर ने 2 विकेट निकाल दिए थे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका वापस पलट नहीं सका।
बिल्कुल, अभी तक जो मैच देख रहे हैं इसमें क्या लग रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है?
टर्निंग पॉइंट तो बढ़िया, संजू सैमसन की पारी बहुत अच्छी है, ईशान किशन ने बहुत अच्छे रन बनाए हैं, शिवम दुबे करके हर अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और अब ये देखिए तिलक वर्मा ने 2 छक्के लगाए 5 गेंदों पे 15 रन। हर आदमी आ रहा है मैदान पर, रन बना रहा है, रनों को स्कोर बोर्ड पे रन लगाने चाहिए। अभी 19वां ओवर चल रहा है और 230 के आसपास पहुंच चुका है, 229। तो मैं समझता हूं कि इंग्लैंड के लिए मुश्किलें होंगी अगर 240 पार कर जाता है भारत तो। हालांकि वो सक्षम है, और क्रिकेट में कहते हैं ना कि जब तक आखिरी गेंद न डल जाए आप कुछ नहीं कह सकते। शानदार अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन यह भी है कि बहुत बड़ा दबाव होता है जब चेज कर रहा होता है। भारत ने जैसे 196 रन बनाए थे, चेज किया था, लेकिन यहां बहुत बड़ा दबाव होगा इंग्लैंड के ऊपर।
ठीक है, अब अगर मुकाबला भारत जीत जाता है तो फाइनल मुकाबला 8 मार्च को होने वाला है न्यूजीलैंड से, तो ऐसे में टीम को कैसे देखते हैं आप?
मैं समझता हूं कि अगर भारत आज जीत जाता है तो फिर न्यूजीलैंड को तो भारत लेगा आराम से। ठीक है, न्यूजीलैंड ने कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एक दिन होता है, लेकिन भारतीय टीम ने एक न्यूजीलैंड के एक बहुत एक्सपर्ट खिलाड़ी थे पुराने, उन्होंने कहा था कि पहले कहते थे कि भारतीय बल्लेबाजी में इतनी गहराई है कि कई बार वो खुद उसी में डूब जाती है, लेकिन अब डूबती नहीं, गहराई बहुत ज्यादा है, कोई ना कोई एक या दो खिलाड़ी अगर चल जाते हैं तो नैया को पार ले जाते हैं।
तो वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी। इस मैच के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहु प्रारूप वाली श्रृंखला का भी समापन होगा, और इसमें भारत ने T20 श्रृंखला 2-1 से जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एक दिवसीय श्रृंखला 3-0 से जीती थी। और बढ़ते हैं आगे, श्रोताओं बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन ने दूसरे दौर में हांगकांग के एंगस एनजी को 21-19, 21-23 और 21-10 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट।
इससे पहले लक्ष्य सेन ने पहले दौर के मुकाबले में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी डिफेंडिंग चैंपियन चीन के शियुकी को रोमांचक मुकाबले में पराजित कर टूर्नामेंट का बड़ा उलटफेर किया था। प्री क्वार्टर फाइनल में खेले गए मुकाबले में लक्ष्य सेन ने एंगस एनजी के खिलाफ शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद बढ़त लेते हुए पहले सेट को 21-19 से जीता। दूसरे सेट में एंगस ने जोरदार वापसी की और सेट को 23-21 से जीता। हालांकि अंतिम सेट में 3 पॉइंट से पिछड़ने के बाद सेन ने बढ़त बनाते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा और 21-10 से शानदार जीत हासिल की। अब लक्ष्य सेन का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में ली शी फेंग से होगा। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
तो कुलविंदर जी, जिस तरीके से इस मैच में हमने देखा कि लक्ष्य सेन ने काफी अच्छी वापसी की और इस जीत में उनकी सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगता है क्या रही, क्योंकि एक के बाद एक वो अच्छी परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं।
अब देना शुरू किया इस टूर्नामेंट में, पहले जल्दी बार हो जाता है काफी समय से, ऑफ द फॉर्म चल रहे थे, लेकिन अब अच्छा है, समझबूझ के साथ खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। 1988 में प्रकाश पदुकोण ने जीता था, 2001 में पुलेला गोपीचंद ने जीता था। तो काफी अरसे से भारत को कोई बड़ा बैडमिंटन का ना तो कोई ऐसा खिलाड़ी मिल पाया है। लक्ष्य सेन जब आए थे पेरिस ओलंपिक में, ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही बहुत स्टार बन जाएंगे, लेकिन बीच में उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही। तो अब धीरे धीरे देख समझ कर खेल रहे हैं, नेट के पास भी खेलते हैं, पीछे ड्रॉप शॉट भी लगाते हैं, स्मैश भी उनका बहुत अच्छा। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इनको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पीछे जो असफलताएं मिली हैं उसका मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है बच्चे के ऊपर, और ज्यादा उम्र भी नहीं लक्ष्य सेन की, लेकिन भविष्य उनका काफी उज्ज्वल है भारत।
बिल्कुल, अगला मुकाबला ली शी फेंग से होने वाला है, कितना टफ कॉम्पिटिशन।
देखिए टफ है, ये जो कंट्री है, इनके जो खिलाड़ी है उनको बचपन से 4-5 साल की उम्र से सिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये अभेद है, अजय हैं, उनको भी हराया जा सकता है और हराया भारत ने कई बार। तो मैं समझता हूं कि बराबर अपनी जो उनके बेसिक्स हैं उसके ऊपर खेलना चाहिए, नजर रखनी चाहिए, और ड्रॉप शॉट जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान, क्रॉस कोर्ट जो ड्रॉप शॉट करते हैं वो ऐसा ही विपक्षी के साथ जो खिलाड़ी हैं वो ऐसा भारत के साथ या दूसरी टीमों के साथ करते हैं, उस पर पूरी नजर होनी चाहिए।
बिल्कुल, वही बात शतरंज की करते हैं। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के चौथे दौर में भारत के डी कुकेश और चेक गणराज्य के डेविड नवारा के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा। प्रतियोगिता में अब सिर्फ 2 दौर बाकी हैं और डी कुकेश को 2 अंक के साथ आखिरी स्थान पे हैं। तो जिस तरीके से कुलविंदर जी डी कुकेश और डेविड नवारा के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा, इस मैच में दोनों खिलाड़ियों की रणनीति आपको किस तरीके से दिखी, और क्या लगता है कि डी कुकेश अब अच्छी वापसी कर पाएंगे, क्योंकि बैक टू बैक उनका मैच कुछ इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा
जी
था।
उनके परफॉर्मेंस सही नहीं थे, एकदम से छोटी उम्र में विश्व चैंपियन बन गए थे, बहुत बड़ा नाम हो गया था। भारत तो मैं समझता हूं कि चेस का एक खजाना है, बहुत से खिलाड़ी आए हैं, आप विश्वनाथन आनंद से लग जाइए। तो ये रणनीति है, उस जिस बेसिक पे उन्होंने विश्व कप जीता था, विश्व चैंपियन बने थे, बड़े खिलाड़ी को हराया था, उस अपने बेसिक पे रहना चाहिए और काम एंड क्वाइटली जिसको कह सकते हैं, उस दिन आप जल्दबाजी ना करें तो आप अपनी पार पा सकते हैं।
इस ये भी कहा जा रहा है कि डी गोकेश की परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं जो एक दबाव है, प्रेशर है, उसका असर भी दिखाई दे रहा है, क्या ये हो सकता है कि
जी होता है, क्योंकि एकदम जो स्टार बनता है ना तो सबकी निगाहें उसके ऊपर होती है, उसके फिर वीडियोस देखे जाते हैं, कोचेज दिखाते हैं दूसरे खिलाड़ियों को, देखिए ये उनकी आंखें इधर होती है, इनकी रणनीति ये रहती है, ये इस तरीके से चलते हैं, तो उसका कार्ड, जैसे क्रिकेट में अभिषेक शर्मा के कार्ड ढूंढी है ना लोगों ने लगातार 4-5 में, तो हर एक को वीडियो दिखाई जाती है, चाहे हॉकी, आजकल गेम मैदान के ज्यादा बाहर खेला जाता है, कंप्यूटर पर खेला जाता है, सिखाया जाता है।
और इसके साथ ही लगातार हम देख रहे थे कि मुक्केबाजी की भी बात कर लेते हैं। भारतीय युवा मुक्केबाजी टीम 8 से 15 मार्च तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में भाग लेगी। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता के लिए बैंकॉक रवाना हो गई है। एक रिपोर्ट।
इस प्रतियोगिता में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कुल मिलाकर 10 सदस्यीय टीम उतारी है। महिला टीम में गुंजन, चंद्रिका भोरिषि पुजारी, जयश्री देवी चिरोम, राधामणि लोंगजाम और प्राची विभिन्न भार वर्ग में शामिल हैं। पुरुष वर्ग में अंबेडकर मीतेई, लैरन लाकपम, उधम सिंह राघव, साहिल दुहान, अमन सिवाच और प्रियांश सहरावत विभिन्न भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप युवा बाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने और दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ियों के सामने खुद को परखने का महत्वपूर्ण मंच है। भारतीय युवा मुक्केबाजों ने पिछले साल बहरीन में तीसरे एशियाई युवा खेलों में 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य सहित 7 पदक जीते थे, जो महाद्वीपीय स्तर पर उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
वहीं इंडियन फुटबॉल सुपर लीग में आज ईस्ट बंगाल एफसी और गोवा एफसी के बीच मुकाबला 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ। और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज एशियाई खेल 2026 के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की। इसका आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में किया जाएगा। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर मांडविया ने बताया कि इस वर्ष 40 से अधिक खेलों में 700 से अधिक भारतीय एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। और इसी के साथ चलते चलते एक बार फिर श्रोताओं आपको स्कोर बता देते हैं। इस समय जो हुआ है उसमें
250 तो भारत ने पार कर लिए, 250 बना लिए 6 विकेट पर, और अभी 2 गेंदे बाकी थी, और अब धीरे धीरे अपडेट होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्कोर है, नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है।
बिल्कुल। तो श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। कुलविंदर जी आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, नमस्कार।